الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. سورة نساء کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ رکوع بھی اللہ تعالیٰ نے انسان اور مسلمان کے کچھ اہم زندگی میں پیش آنے وسائل اور زندگی میں پیش آنے والے مراحل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تعلیمات نازل فرمائی ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ نساء، اس سورت کا نام ہی نساء ہے، یعنی خواتین سے متعلق اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حکم موجود ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ صرف خواتین ہی مسلمان معاشرے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جیسے خواتین کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے دین اور اسلام میں بھرپور اہتمام فرمایا ہے، اسی طرح مرد کے حق کا بھی اہتمام ضروری ہے. اور یہ تصویر کے دو رخ ہیں، یہ چکی کے دو پارٹ ہیں، مرد اور خاتون. ان میں سے اگر ایک بھی معاشرے سے ختم ہو گیا یا ہٹ گیا تو پھر اس نظام کا اور اس معاشرے کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. خواتین پہ جو ظلم ہوتے تھے، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان ظلم کے تنبیہات فرمائی ہیں اور مسلمانوں سے کہا کہ خواتین پر ظلم کرنے سے باز رہو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق معاملات کرو، ان کے ساتھ اصول کے مطابق زندگی گزارو. لیکن جیسا کہ خواتین کے حقوق دین اسلام میں ہیں، اسی طرح خاتون کے لیے مرد کے حقوق بھی ہیں. اور اب یہاں سے خواتین کو خطاب کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف اپنے حقوق کے چکر میں ساری زندگی نہ پڑی رہو، بلکہ مرد کا مقام سیکھو، مرد کا مقام پہچانو، اور اس مقام کے مطابق مرد کے ساتھ سلوک کرو، زندگی گزارو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے. آیت کی ابتدا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد خاتون پر حاکم ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ یہی بنتا ہے، قوام قیام قیام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے نظام کا چلانے والا، کسی بھی نظام کی نگرانی کرنے والا، کسی بھی سلسلے کی ذمہ داری لینے والا وہ قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے خاتون پر، مرد نگران ہے خاتون پر، مرد رکھوالا ہے عورت اور مرد سرپرست ہے خاتون کے لیے. یہ سارے کے سارے ترجمے اس آیت کے کیے جائیں گے اور سب کے سب ترجمے ٹھیک ہیں. مرد خاتون پہ کیوں حاکم ہے؟ پہلی بات کہ مرد کو اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں معاشرے میں دی ہیں وہ ذمہ داریاں سخت ہیں، وہ ذمہ داریاں مشقت والی ہیں اور وہ ذمہ داریاں محنت طلب ہیں. اور یہ کائنات کا اصول ہے، With great power comes great responsibilities. جب بڑی بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دیتے ہیں. اور جو خاتون کے ذمے پہ ڈیوٹی لگی ہے وہ ہے امور خانہ داری، بچوں کی تربیت، گھر کی رکھوالی، شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت، اور گھر کی حفاظت اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی نیابت، یہ وہ تمام ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاتون کے ذمے لگا دی. اب اس میں کسی کو اختلاف ہے تو وہ حقیقت میں فطرت سے اختلاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے اختلاف کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہا اللہ نے انسان پیدا کیا، جس کو چاہا گائے کی صورت میں پیدا کیا، جس کو چاہا بلی کی شکل میں پیدا کیا. اب وہ گائے اور بلی اپنے خدا سے لڑتی تو نہیں ہے کہ اللہ مجھے آپ نے کیوں ایسا پیدا کیا، بلکہ یہ بندگی ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق کہتے ہی اسی ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے سر بس سجود رہتی ہے، سر تسلیم خم رکھتی ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں پہ وہ راضی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مشہور و معروف موم بتی والی آنٹیاں جو ہر اتوار کو نکلتی ہیں احتجاج کرنے کے لیے، وہ اس طریقے کی تصویر پیش کرتی ہیں کہ اسلام کے اندر صرف مرد ہی کو اختیارات ہیں اور مرد ہی کو مکمل پاور ہے، خاتون کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ اسلام میں خاتون کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ جھوٹی باتیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے احکام سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کے ساتھ حقوق کے مطابق چلیں، اصول کے مطابق چلیں، دستور کے مطابق چلیں. جب قرآن کریم میں یہ حکم آ گیا تو اب مرد کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہے، مرد دستور کے مطابق چلے تو اس کا چلنا شریعت میں منظور ہے، اور اگر مرد دستور کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر اس کی وہ پاور ریجیکٹڈ ہے، وہ ظالم ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے कि मर्द के जो दिल में आ गया उसने कर लिया और खातून से मशवरा ही नहीं किया, बल्कि अंतरादिम मिनहुमा व तशावुरिन। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि खवातीन के मामलात में उनकी रजामंदी जरूरी है, और सिर्फ रजामंदी ही काफी नहीं है, व तशावुरिन और मशवरा भी करो। अब आप बताइए कि ऐसा हाकिम जिसको दस्तूर के मुताबिक चलने का कहा जाए और जिसको ये भी कहा जाए कि अपने लाइफ पार्टनर की रजामंदी का ख्याल रखोगे और उसको ये भी कहा जाए कि मशवरा भी करोगे, अब ये हाकिम तो नहीं हुआ ना। ये है वो मर्द जिसको अल्लाह ताला ने खातून के लिए पैदा किया है, और इस मर्द का मकाम हर सूरत में हर तरीके से अल्लाह ताला की तकसीम के मुताबिक खातून से ज्यादा है। वो लोग जो हर वक्त खवातीन के हुकूक की बातें करते हैं, उन लोगों ने खवातीन के साथ जो ज्यादतियां और जुल्म किए हैं हमने यहां से अल्हम्दुलिल्लाह बारहा बयान किए हैं। जो लोग खवातीन के जिस्म को मार्केटिंग में बेच रहे हैं ये कोई खवातीन के साथ अच्छा सुलूक नहीं है, और जो लोग खवातीन को जहाजों में और रेलगाड़ियों में और होटलों में खाने उठाने की नौकरी पे रखे हुए हैं ये खवातीन के मकाम के साथ ज्यादती है। और वो लोग जिन्होंने अपने दफ्तरों में सेक्रेटरी खवातीन रखी हुई हैं और एक एक दफ्तर में 20-20 खवातीन बिठाई हुई हैं, खवातून का मकाम ये नहीं है, ये मर्द का मकाम था। मर्द अपनी जिम्मेदारी से छुप रहा है, भाग रहा है, और खातून का जिस्म सिंफ नाजुक और उज्जत और हया को एक सेल आइटम बनाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस पे कोई खातून खुश होती है तो वो शैतान की एजेंट है, वो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान वाली नहीं। ये फितरत के खिलाफ है। उस खातून से पूछिए कि तुम्हारी दादी ये काम करती थी, उस खातून से पूछिए कि तुम्हारी नानी पर नानी कभी जिंदगी में ऐसे नंगे होके दफ्तर की तरफ गई थी, नहीं गई थी। पता चला कि ये सारा बखेड़ा ये सारा ड्रामा आपका बनाया हुआ है। इससे पहले जब शैतान इंसान पे इतना हावी नहीं था तो उस वक्त आपके बड़े भी ठीक थे। फिर ये काम किसके हैं, ये काम मर्द के हैं। मर्द घर पे बैठे और बच्चों की तरबियत करे और खातून की तरह घर के बर्तन धोने लगे और खाना पकाने लगे, अब ये मर्द नहीं है। मजनू नजर आती है और लैला नजर आता है, दुनिया का हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए कुरान करीम ने दोनों तरफ बैलेंस रखा है, एतदाल रखा है, खवातीन के हुकूक भरपूर तरीके से बयान फरमा दिए। अब मर्दों की फजीलत, मर्दों का मकाम और मर्तबा, उसके बारे में अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की है। आयत क्या कह रही है, अर रिजाल कवामूना, मर्द ऊपर हैं, फजीलत वाले हैं, सरबराह हैं। क्यों है? इसलिए कि पूरी दुनिया का जो निजाम है उसमें सरबराही जरूरी है। ये जो हर वक्त बातें करते हैं जमहूरियत की और इंसानी हुकूक की, बिल आखिर ये भी आपके गर्दन पे सवारी करते हैं। क्यों बादशाह बने हुए हो भाई, हट जाओ। क्यों गवर्नर बने हुए हो, हट जाओ। इंसानों पे बादशाहत कर रहे हो, शर्म नहीं आती? और तुम वजीर आला बने हुए हो, चीफ मिनिस्टर बने हुए हो, किसके? इंसानों के। क्यों बने हुए हो? इसलिए कि बगैर सरबरा के निजाम चलता ही नहीं है, ख्वाह वो कोई मुल्क हो, कोई लश्कर हो, कोई कौम हो, कोई कबीला हो, कोई देहात हो, कोई बस्ती हो, कोई शहर हो, कोई घर हो। हर आईली निजाम के अंदर, हर इज्तिमाई निजाम के अंदर अमीर जरूरी, और उस अमीर का फायदा क्या होता है कि वो अमीर जब इख्तलाफ हो जाता है तो इख्तलाफ को वो समेटता है, जब किसी बात में निजा वाकई हो जाता है जो अमीर का फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। तो जिस तरह मुल्क के अंदर आपको वजीर आजम की जरूरत है, जिस तरह सूबे के अंदर आपको वजीर आला की जरूरत है, इसी तरह घर के अंदर भी एक खानदान के अंदर भी सरबरा जरूरी है। जिन खानदानों के सरबरा नहीं होते उनका जो अंजाम होता है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। इसलिए ये अल्लाह ताला का निजाम है फितरत, और मुसलमान को ये अमानत दी गई है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आ गए और अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपनी मर्जी से घर बसा लिया, नहीं, ये एक अमानत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जिस पैराहे में ढाला है और इंसान को जिस अजीम मकाम पे पहुंचाया है, अब आने वाले इंसानों को उसमें मजीद तरवीज करनी है, तरक्की करनी है, और ये अमानत अल्लाह ताला ने हमें और आपको हवाले की है। हम जो घर बसाते हैं, हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारी जो बेगम होती है, ये सब के सब उस अमानत की अदायगी में हमारे मुआविन है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो निजाम है खानदान है, आइली निजाम है, ये एक मुल्क की तरह है, और मुल्क का बादशाह होता है, मुल्क का सरबरा होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया खानदान का सरबरा वो मर्द है। अर्रिजालु कवामूना, मर्द सरबरा हैं, अलन निसाए खातून पर, औरत पर। क्यों? पहली वजह, बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, बवजह उस फजीलत के जो अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर दी है। अब ये अल्लाह की दी हुई फजीलत है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये वहबी है, ये कस्बी नहीं है। अल्लाह ने जिसे चाहा मर्द पैदा कर दिया और जिसे चाहा खातून पैदा कर दिया। लेकिन यहां पे गौर कीजिएगा, बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर। कुरान की वर्डिंग देखिए, कुरान के जुमले देखिए कितने अजीम है। इसमें इशारा है कि तुम दोनों कोई गैर नहीं हो, एक फैमिली हो, एक खानदान हो। और जिस्म के आजा के बारे में भी यही कहा गया है, बनी आदम आजा यदिगरस्त, कि ये जो इंसान का जिस्म है इसमें जो फजीलत सर की है वो फजीलत पांव की नहीं है, जो फजीलत दिल की है वो फजीलत पैर की उंगली की नहीं है। बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ताला ने चाहा मर्द को जिस्म में जिस मकाम की फजीलत दे दी, उसी तरह मर्द और ख्वातीन खानदान है, और उस खानदान का जिस्म का कुछ हिस्सा मर्द है, उसकी मिसाल सर के जैसी है, और कुछ हिस्सा खातून है, उसकी मिसाल सीने जैसी है। ये कुरान करीम कह रहा है, बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, हमने बवजह इसके कि अल्लाह ने बाज को फजीलत बाज पर दी है। दूसरी वजह, वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और इसलिए कि मर्द माल खर्च करते हैं। विरासत में खातून का एक हिस्सा और मर्द के दो हिस्से। क्यों? इसलिए कि मर्द ने शादी करनी है, और ये हिस्सा जो इसको इजाफी दिया गया है ये उसी खातून पे खर्च करना है, महर देना है, वलीमा करना है, बच्चे पैदा होंगे उनकी तरबियत करनी है। अगर आपने दोनों को बराबर सराबर तकसीम दे दी तो फिर मर्द क्यों खर्चा करे? फिर तो ज्यादती है ना भाई, सबको बराबर हिस्सा मिला है, तो आधा तुम लाओ आधा मैं लाऊं। अल्लाह ताला का निजाम इतना कामिल है कि पहले ही से इस मसले का सद्देबाब कर दिया। और जिन लोगों ने एतराज किया था कि मर्द को दुगना हिस्सा क्यों दे रहे हैं, कुरान ने जवाब दे दिया, वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, इसलिए कि माल खर्च करना मर्द की ड्यूटी है, इसलिए कि खर्चा करना मर्द की ड्यूटी है, खातून की ड्यूटी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने विरासत में मर्द को दोगुना हिस्सा दे दिया और खातून को महरूम नहीं किया। उसूली तौर पे बात की जाए तो खातून किसी चीज की हकदार थी जब तक शादी नहीं हुए बाप की कफालत में है, और जब शादी हो गई तो शौहर की कफालत में, तो उसको पैसों की जरूरत है नहीं। फिर भी इस्लाम का निजाम है, अदल देखिए कि इस्लाम ने वाजह कर दिया कि मर्द को दुगुना हिस्सा क्यों दे रहे हैं। बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, इसलिए कि वो अपने माल को खर्च करते हैं। इस आयत में एक और इशारा लतीफ है, और वो ये है कि तफसीर बहरुल मुहीत में फरमाते हैं कि किसी के लिए भी सरबराह होना सिर्फ गलबे की वजह से, बदमाशी की वजह से जायज नहीं है। बिमा फद्दलल्लाहु बअहुम अला बअद, पहली बात उसमें वो फजीलत मौजूद हो कि वो सरबराह बनने के काबिल हो। जब आप डाकू को और चोर को और बदमाश को सरबराह बनाते हैं तो फिर डाकू और चोरों का ही फायदा होता है। इसलिए बिमा फद्दलल्लाह, उसमें फजीलत होनी चाहिए, वो नेक हो, वो बुर्दबार हो, वो संजीदा हो, वो अदल इंसाफ को जानता हो, वो तकाजों को पूरा करता हो। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और उसमें सलाहियत भी मौजूद हो। अगर किसी के अंदर फजीलत नहीं है तो वो भी सरबराही का काबिल नहीं है, और किसी के अंदर अगर सलाहियत नहीं है कौम की रहनुमाई करने की, घर की रहनुमाई करने की, तो फिर उसको भी उस घर का सरबराह बनने की इजाजत नहीं। यह कुरान करीम का मेयार है। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और बवजह इसके कि जो ये माल खर्च करते हैं खातून पर, फसालेहातो, बस वो खवातीन जो नेक है, नेक आमाल करती हैं, कानितातुन, और फरमान बरदार हैं, ताबेदारी करती हैं, हाफिजातुन लिलगैबी, और पीठ पीछे हिफाजत करती हैं। हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल कौन सी बीवी बेहतरीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा नजरत इलैहा सर्रत का, जब तुम उसको देखो तो तुम्हें खुशी हो, तुम्हें खुशी महसूस हो। वैजा अमरतहा अताअत का, और जब तुम उसको कोई बात कहो तो वो तुम्हारी बात माने, सुने। वैजा गप्त अनहा हफिजत का, और जब आप घर पे न हो तो वो आपके पीछे हिफाजत कर रही हो। क्या जबरदस्त सिफात आपने बयान फरमाई कि इजा नजरत इलैहा सर्रत का, जब आप देखें तो आपकी थकावट दूर हो, आपका जन्नत, आपका घर जन्नत का मंजर पेश करे। वैजा अमरतहा अताअत का, और जब तुम कोई बात कहो तो वो माने। वैजा गिबत अनहा हाफिजत का, और जब तुम वहां पे मौजूद ना हो तो वो तुम्हारे पीछे अमानतदारी करे, अहदो पैमान का ख्याल करे। इसलिए कुरान करीम ने भी वही सिफात बयान फरमाई कि नेक हो, फरमान बरदार हो, हाफिजातुन, और हिफाजत करने वाली हो शौहर की, इज्जत की, घर की, औलाद की, माल की, हर चीज की। लिल गैब, जबकि शौहर मौजूद न हो। बिमा हफिज अल्लाह, उस हिफाजत से जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। आमतौर पर मुआशरे में खवातीन किनारा कश रहती हैं, और बेहयाई में और इस किस्म के मामलात में मुलविस नहीं रहती। वो वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उनकी खास मदद की है, और जब वो मदद शामिल हाल नहीं रहती तो फिर खातून से ज्यादा खतरनाक चीज भी कोई नहीं है। पूरे पूरे मुआशरों को तबाह कर देना और पूरी पूरी कौमों को तबाह करने का सेहरा खवातीन के किरदार उनमें मौजूद है। इसलिए फरमाया, बिमा हफिज अल्लाह, अल्लाह की बंदी बन के रहो, अल्लाह ने जो तुम्हें हिफाजत दी है उस हिफाजत को अपने पास महफूज रखो। मसला हल हो गया। अब सब खवातीन ऐसी नहीं होती, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो शौहर की नाफरमान होती, बात नहीं सुनती, इज्जत नहीं करती, एहतराम नहीं करती। उसको शिकायत ये होती है कि मैं बीवी क्यों हूं और ये मर्द क्यों है। अब इसका हल तो कोई नहीं है ना, तो कुरान करीम ने इसका हल पेश किया है। वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, और वो खवातीन जिनकी नाफरमानी का तुम्हें डर है, ऐसी खातून जो बात नहीं सुन रही, मान नहीं रही, एहतराम नहीं कर रही, फ़ऐज़ूहुन्ना, तो उनको नसीहत कीजिए। सबसे पहली बात नसीहत, وہ بے حیا و بے شرم جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خواتین پہ ظلم کی تبلیغ کرتا ہے، آؤ ذرا قرآن کریم دیکھو، ایسے عدل و انصاف کی بات فرمائی ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجئے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، آپ مہربانی فرما کے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، ٹھیک کر لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی، بہت اچھا۔ نہیں سمجھ میں آئی، وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بائیکاٹ کیجئے، بستر الگ کر دیجئے، وہ عظیم رشتہ، وہ عظیم محبتیں، ان کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیجئے، تاکہ اس کو تنبیہ ہو، اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے، میرا میاں مجھ سے ناراض ہے، اور کیوں ناراض ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی نافرمانی۔ دوسرا مرحلہ، پہلے بات سے مسئلہ حل کرو، بات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کنارہ کش ہو جاؤ۔ کنارہ کش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکال دو، علماء نے اس آیت کے نیچے وضاحت کی ہے کہ کمرہ چھوڑ دو، بستر چھوڑ دو، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ تشدد کی اور گھر سے نکال باہر کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر بھی نئی بات سمجھ میں آ رہی اور بائیکاٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر نمبر آتا ہے تنبیہ، وَضْرِبُوْهُنَّ، اور ان کو مارو۔ کیسے مارو؟ ہڈی توڑ دو ان کی؟ نہیں، سر پھاڑ دو ان کو؟ نہیں، ایسی مار کے جس سے صرف آپ کی ناراضگی کا اظہار ہو جائے اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں غلطی کر رہی ہوں، اور اس غلطی سے وہ رک جائے تو کافی۔ اصل میں یہ مار کیوں ہوئی ہے، اب آپ بات سن لیجئے، مسئلہ سمجھ لیجئے۔ حضرت زید ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی تھی حضرت سعد ابن ربیع سے۔ اس بیٹی کا نام حبیبہ ہے اور شوہر کا نام سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ آپس میں بنی نہیں اور لڑائی ہو گئی، اختلافات ہو گئے، اور اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ سعد نے حبیبہ کو مارا۔ وہ اپنی شکایت لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ جی سعد ابن ربیع سے ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور سعد جو ہے وہ میری بیٹی کو مار رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، جس نے اس بیگم کی پٹائی کی ہے سب جاؤ اور اس کو پکڑو، اس کی پٹائی کرو۔ جب یہ لوگ یہاں سے نکل رہے تھے تو وہاں سے جبرائیل امین تشریف لے آئے کہ ان کو روکیے اللہ کے رسول، یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، شکر کیجئے اللہ کا ورنہ آج ہم سب کی پٹائی ہو رہی ہوتی، آپ جانتے ہیں یہ سب۔ اور یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی کہ خواتین کے لیے تین مرحلے ہیں تنبیہ کے۔ نمبر ایک، بات سمجھائی، سعد بن ربیع نے بات سمجھائی تھی، وہ سمجھی نہیں تھی۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ ان سے بائیکاٹ شروع کر دو، بائیکاٹ بھی کیا تھا، فائدہ نہیں ہوا، تو اب تیسرا راستہ تو کوئی اور نہیں ہے نا، تیسرا راستہ جنگ آمد فارسی میں کہتے ہیں کہ جب آدمی تنگ آ جاتا ہے تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اپنے ابی زہیر کو اور ان کے گھر والوں کو طلب کیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ مار پیٹ شوہر کے لیے خاتون کا، بشرطیہ کہ وہ تشدد نہ ہو۔ دوسری بات، چہرے پہ مارنا مطلقاً منع ہے، کسی بھی چیز کے، یہاں تک کہ جانور کے چہرے پہ بھی مارنا منع ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس سے مارنا مراد ہے بھی تو مارنے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک مارنا دشمن دشمن کو مارتا ہے اور ایک مارنا باپ بیٹے کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ کیا باپ بیٹے کا قاتل نہیں ہے، باپ بیٹے کا دشمن نہیں ہے، لیکن باپ کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم میں جو میں اس کی پٹائی کروں گا اس کو فائدہ دے گی، ये बच जाएगा शैतानत से, शरारत से, तो जिस तरह बाप को बेटे के ऊपर दस्तरस है कि वो तंबीह के दौरान सख्ती करे, इसी तरह घर के सरबराह को भी ये दस्तरस अल्लाह ने दी है कि वो तंबीह के दौरान सख्ती करेगा। मसला समझ में आया? इसके बाद अब आखिरी बात सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वखियारुकुम ला यद्रिबना, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों को मारता नहीं है। बात ही खत्म हो गई। इजाजत है लेकिन पसंदीदा नहीं। अब आपको इस्लाम से अब भी शिकायत है? नहीं जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा से फरमा दिया कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी को मारता नहीं। मुस्नद अहमद में रिवायत है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर के लिए बेहतरीन है। ये तमाम दलाइल की रोशनी में कुरान की आयत 100% अपने मकाम पे दुरुस्त है और ऐन फितरत के मुताबिक है। और काश के मर्द को भी ये बात समझ में आ जाए और खातून को भी ये बात समझ में आ जाए कि ये एक निजाम है, जिंदगी है। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, कोई मखसूस किस्म का इसमें निशाना नहीं है, एक जनरल कानून है। और कानून जिंदगी, उसमें सख्तियां भी होती हैं और उसमें नरमियां भी होती। आप जाके पार्लियामेंट वालों से लड़िए ना कि तुमने सजाए मौत की सजा क्यों रखी है। उनसे तो लड़ाई नहीं करते ना, पता है कि जब एक हद तक इंसान जुर्म करता है उसके बाद सजा मिलती है। और लोगों को जेल में क्यों बंद करते हो, ये तो हुकूक इंसानी के खिलाफ है। लेकिन वही हुकूक इंसानी के ठेकेदार लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? इसलिए कि मजबूर हो जाते हैं। उनको पता होता है कि अब इससे आगे हमारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो वही बड़े मुल्क की मिसाल ले लीजिए, छोटे घर पर लागू कर दीजिए। घर एक मुल्क है और उस मुल्क में औलाद हैं, बेगमात हैं, लोग हैं, उनमें से किस्म किस्म के मिजाज हैं। किसी को बात समझ में आएगी जबान से, किसी को बात समझ में आएगी एक्शन से, और किसी को बात समझ में आती है डंडे से। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। वह इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, ये तो बात हो गई घर के अंदर अंदर की। इख्तिलाफात ऐसे थे कि इस तरह अमल कर लिया और इख्तिलाफ खत्म हो गया। इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, मर्द को कह दिया तुम हर वक्त खुदा बनते न फिरते रहो, अल्लाह ताला बड़े हैं, अल्लाह ताला अली हैं, अल्लाह ताला कबीर हैं, अजीम हैं, और अल्लाह से डरते रहो। दूसरा मसला सुन लीजिए, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, और अगर तुम्हें डर लगे कि आपस में इख्तिलाफात शदीद हैं, फबअथु हकमन मिन अहलिही, तो भेज दो एक फैसला करने वाला मर्द के घर से, वह हकमन मिन अहलिहा, और एक फैसला करने वाला खातून के घर से। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने तमाम काजियों को खत लिख दिया था कि अदालत में मसला लाने से पहले घर के अंदर मसले को हल करने की कोशिश करो, इसलिए कि जो अदालत के अहकाम होते हैं इसकी कदूरतें दिलों में बहुत दूर तक रहती हैं। क्या हजरत उमर का कौल है और क्या अजीब बात। क्या फरमाया कि अदालत में मुकदमा शुरू करने से पहले फरीकैन को बुलाओ, आपस में बिठाओ और कहो कि जी आपस में इस मसले को हल कर लीजिए, इसलिए कि जो काजी फैसला करता है उसकी कदूरतें बहुत दूर तक रहती हैं। काजी नाबलस, काजी कुदस अलाउद्दीन तराबलिसी लिसान उल अहकाम में और मईन उल अहकाम में बड़े बड़े काजियों ने यह बात लिखी। और आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो हमारी अंग्रेजी अदालतें हैं ये जरगे से बहुत तपती हैं, पंचायत इनको बहुत बुरी लगती है। क्यों? इसलिए कि इस्लामी कानून कुछ और कहता है और अंग्रेजी कानून कुछ और कहता है। वहां जरगे में जो फैसला होता है शायद वहां कोई अल्लाह से डरने वाला मुसलमान मौजूद हो, उसने कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला कर दिया, लेकिन वही मसला जब अदालत में चला जाता है तो वहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, अमीर आदमी हो या गरीब हो। पैसे बहुत हैं, तो फिर वकील साहब वो बड़े गौर से आपका जायजा लेता है कि इससे मैं कितनी फीस मांगू, और अल्लाह अल्लाह करके आपने फीस दे दी, तो अब वो वकील उसके आपका मुस्तकबिल उसके हाथों में है, उसका मूड अच्छा है केस जीत जाएगा, मूड खराब है किसी बात पे नाराज हो गया तो आपका फेस गया। वहां से आगे बढ़ो तो वो फिरौन जो ऊपर बैठा होता है और पीछे से डीलिंग कर रहा होता है, पैसे की लेन देन कर रहा होता है लोगों से, अब तो ये खुला सच है, मैं तौहीन नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, वो खुद अब वो बात जानते हैं, अपने गरेबान में झांको तो सही। इसलिए इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि वो जी जरगा क्यों कर रहे हो। हजरत उमर का कानून याद रखिएगा कि अदालत में जाने से पहले घर वाले, देहात वाले, गांव वाले, शहर वाले आपस में मिल बैठ के मसले को हल कर लें तो अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर अदालत भी कौन सी, वो ये अदालत, फला औला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलील अजीम, जहां पे इंसाफ की मार्केट लगती हो, जहां पे इंसाफ की बोली लगती हो कि बताओ कौन जितने ज्यादा पैसे देगा हम उसके हक में फैसला करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस्लामी कवानीन है और इस्लामी कवानीन के अंदर अल्लाह ताला ने तलकीन फरमाई कि बेगम की घर से भी एक फैसले वाला आदमी हो और शौहर के घर से भी एक फैसले वाला आदमी हो, दोनों फरीकें इनको बिठाएं, बात करें और उनको समझाएं। वस्सुल्हु खैर, कुरान में एक और मकाम पे है, सुलह बेहतरीन चीज है, सुलह कर लो, मामलात को ठीक कर लो। यूरीदा इस्लाह, अगर ये दोनों इस्लाह की उम्मीद रखते हैं, इस्लाह का इरादा रखते हैं, ये याद रखिएगा किसी भी फैसले के अंदर जो फैसल होता है, जो हकम होता है, इख्तियारात उसी के होते हैं। यहां पे एक मशहूर मसला समझ लीजिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हकम उसको अगर मियां बीवी इख्तियारात दे दें कि जो आपका फैसला होगा वो हमें मंजूर है, अगर आप सुलह करते हैं तो सुलह हो जाएगी, और अगर आप अलाइदगी का फैसला करते हैं तो अलाइदगी हो जाएगी, और हकम ने अलाइदगी का फैसला कर दिया तो तलाक वाके हुए। मर्द ने तलाक नहीं दी, शौहर ने तलाक नहीं दी, लेकिन हकम ने दे दी, हकम ने फैसला कर दिया कि ये अलग और वो अलग हो जाएं, तो अब तलाक वाके हो जाती है, बशर्त यह कि मियां बीवी ने उसको तलाक का वकील बनाया हो। अइम्मा सलासा के नजदीक इसके लिए वकालत जरूरी नहीं है, उनके यहां वकील को बहुत पावर दी गई है, वकील फैसला कर दे सुलह की तो सुलह हो गई, और वकील फैसला कर दे तलाक की तो तलाक हो गई। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पाबंद किया है वकील को कि नहीं, आपको कुरान ने सिर्फ सुलह का इख्तियार दिया है, अलीदगी का इख्तियार नहीं दिया है। अलीदगी का इख्तियार वो आपको खातून और मर्द देंगे, इसलिए अगर इख्तियार दे दिया तो वो लागू होगा, और अगर इख्तियार नहीं दिया तो फिर उसका ये इख्तियार में नहीं है। यूरीदा इस्लाह, अगर ये दोनों इस्लाह का इरादा करते हैं, युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे देंगे। इन अल्लाह कान अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला भरपूर इल्म रखते हैं और अल्लाह ताला हर चीज से खबीर है। वअबुदुल्लाह, ये हो गए मुआशरती मामलात। एक दफा फिर फरमाया, अच्छा शौहर कैसे बनेगा, तकवा से। अच्छी बेगम कहां से आएगी, तकवा से मिलेगी, और तकवा क्या चीज है, अल्लाह की इबादत और तौहीक और शिर्क से पनाह। इसलिए देखें, अब दोबारा से वो असल असल की तरफ आ गए कि देखो वअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करनी है, वला तुशरिकु बिही शैया, अल्लाह के साथ न जात में, न सिफात में, न इख्तियारात में, न कामों में, किसी भी चीज में, किसी भी हद में अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान कीजिए, ये तकवा का हिस्सा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि बड़े से बड़ा गुनाह कौन सा है, आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना गुनाह कबीरा है। दूसरे नंबर पे उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की ना फरमानी, और वश्कुरली वले वालिदैया, एक आयत में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दो शुक्र का हुक्म दिया है कि मेरा भी शुक्र अदा किया करो और मेरे वालिदैन का शुक्र भी और अपने वालिदैन का शुक्र भी किया करो। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आसमानों में रब खुदा है और जमीनों पे जो रखने वाले हैं, तरबियत करने वाले हैं, वो वालिदैन से बड़ा कोई नहीं है। ये है इस्लाम के अंदर वालिदैन का मकाम कि तकवा के जब उसूल बयान होना शुरू हो गए तो सबसे पहले फरमाया एक अल्लाह की इबादत, वला तुशरिकु बिही शैया, और शिर्क से दूर रहना, व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ भलाई कीजिए, यहां तक के वो काफिर ही क्यों ना हो। काफिर मां को अजियत पहुंचाना जायज नहीं, काफिर बाप को अजियत पहुंचाना जायज नहीं है, सिर्फ वो जो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देंगे उसमें उनकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो भी तरीके से, इस तरीके से कि उनको तकलीफ ना हो, उनकी दिल आजारी ना हो। एक हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहकी की रिवायत कि जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है और फरमान बरदारी करता है, जब जब वो अपने वालिदैन को देखता है अल्लाह ताला उसको हज के बराबर अजर देते। काबा को जाके देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि से यह सुना था कि जब काबा की याद आ रही हो, नहीं जा सकते तो वालिदैन को देखो। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए जमीन में एक एहसान पैदा किया है। और हदीस शरीफ में वालिदैन के फजाइल, तिर्मिजी शरीफ में हदीस है, रिदा रब फी रिदा वालिद, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं, बशर्ते कि वो बाप अल्लाह का बंदा हो, वह शैतान का बंदा ना हो, यह जरूरी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, यहां से तकवा के मरजात शुरू हैं। वालिदैन के साथ भलाई एक अजीम मौजू है, खुदा की कसम इस पे पूरी रात बात करें, रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। इख्तिसार के साथ आगे चलते हैं, वबिदिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। बुखारी शरीफ में हदीस, मुस्लिम शरीफ में हदीस, तुम में से जो शख्स चाहे कि उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे और उसका रिज्क वसी हो तो वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखे। अजीब यह कानून है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे और मेरा रिज्क वसी हो, हर वक्त मेरे पास रिज्क मौजूद हो, तो उसके लिए रिश्तेदारों का ख्याल रखे। अल्लाह ताला ने भी फरमाया वबिज़िल क़ुरबा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक कीजिए, वल यतामा, और यतीमों के साथ भी अच्छा सुलूक कीजिए। यतीम बेचारे का कोई नहीं होता, सब उसको अपने अपने गरज और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तकवा का नतीजा नहीं है। तकवा का हुक्म यह है कि जैसे अपने वालिदैन के साथ तुम एहतराम और अजमत का रिश्ता रखोगे, ऐसे अपने भाई के यतीम बच्चों के लिए भी मुखलिस रहना जरूरी है। वल जारी दिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदार का ख्याल भी रखिए, या फिर तर्जुमा करेंगे जरा गौर से देखिएगा, वलजारिजिल कुर्बा वलजारिल जुनुबे, और करीब के पड़ोसी का भी ख्याल रखो और दूर के पड़ोसी का ख्याल भी रखो। हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल अमीन आकर बार बार पड़ोसी के ख्याल रखने का कहते थे, बार बार आके पड़ोसी का ख्याल रखने का फरमाते थे, यहां तक कि मुझे ये वहम होने लगा, यहां तक कि मुझे ये ख्याल आने लगा कि शायद कहीं विरासत में भी पड़ोसी का हिस्सा तो नहीं है। पड़ोसी कौन सा? कुरान करीम ने दो पड़ोसी बयान किए, जारिज़िल कुर्बा और जारिज़िल जुनुब। इसकी दो तफसीरें हैं, एक तफसीर जारिज़िल कुर्बा करीब का पड़ोसी है, जारिज़िल जुनुब दूर का पड़ोसी। एक तफसीर इसकी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाई है, जारिज़िल कुर्बा वो पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार भी है, और जारिज़िल जुनुब वो पड़ोसी जो पड़ोसी तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। और एक हदीस में आता है कि कुछ पड़ोसी का एक अजर है, कुछ पड़ोसी पर दो अजर है, और कुछ पड़ोसी पर तीन अजर है। कैसे? غیر مسلم پڑوسی کا خیال رکھے تو ایک اجر ہے. عجیب بات, مسلمان نہیں ہے وہ, فرمایا نہ ہو کوئی بات نہیں, انسان تو ہے نا, تمہارا پڑوسی ہے, اس کا خیال رکھو ایک اجر ملے گا. پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو دو اجر ہیں, ایک تو پڑوسی کا حق ادا ہو رہا ہے اور دوسرا مسلمان کا احترام ہو رہا ہے. اور پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو ایسے پڑوسی کا حق ادا کرنے سے تین حقوق ادا ہوتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے, والجار الجنوب, اور اپنے جو دور کے پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھو, والجار ذی القربى, اور جو قریب کے پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھو, والصاحب بالجنب, اور جو تمہارے ہم سفر ہے, تمہارا ساتھی ہے, دفتر میں ساتھ بیٹھا ہے, ٹرین میں ساتھ بیٹھا ہے, جہاز میں ساتھ بیٹھا ہے, آپ نے منہ بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو برا برا دیکھ رہے ہیں, یہ ایمان کے تقاضے نہیں. یہ ہے اسلام کی حسین تعلیمات کہ گھر سے باہر بھی کہہ دیا کہ آپ کے جو ورکنگ کولیگز ہیں, جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, جو آپ کے ورک فیلوز ہیں, جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کا خیال بھی ضروری ہے. ہم کریں گے ہم سفر ساتھی بالجنب وابن السبیل, اور مسافر جس کا کوئی نہیں ہے, کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی طرف مسافر آیا اور اس نے اس کی مہمانداری نہیں کی, فلیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. وہ اتنی زیادہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وابن السبیل, اس لیے فرمایا مسافر کا خیال بھی رکھو. وما ملکت ایمانکم, اور وہ جو تمہارے نیچے تمہارے غلام اور کنیزیں, ان کو نہ بھولنا, ان کے ساتھ بھی احترام اور ادب کا رشتہ. ان اللہ لا يحب مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ کو اکڑ والے متکبر لوگ پسند نہیں ہیں. مختال کے مختار کہتے ہیں اکڑو کو, اور فخور کہتے ہیں متکبر کو. الذین یبخلون, یہ متکبر لوگ کون ہیں کہ کیوں چندہ دیتے ہو لوگوں کو, کیوں پیسے دیتے ہو مدرسے کو, انویسٹمنٹ کر لو. اور اب تو دوسرے طریقے سے ایسے پکڑ لیا کہ تم نہیں چاہو یا نہ چاہو تم چندہ دے کے دکھاؤ, تمہاری بجلی کا بل ہم ایسا بھیج دیں گے کہ یاد کرو گے. 9.5 لاکھ روپے احسن علوم کا بل ہے بجلی کا, سولر کے باوجود کیسے ہوگا, اللہ تعالیٰ ہیں اور اسی پہ آسرے پہ کر بیٹھے ہوئے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے بر وقت کارروائی نہیں کی, فیصلہ نہیں کیا, غلط لوگوں کو اپنی تمام چیزیں دے دی, اور اب وہ کہتے ہیں کہ تم مرو یا جیو, بھاڑ میں جاؤ, پیسے دینے پڑیں. یہ اس لیے ہوتی ہے ریاست کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی چین بیچ دیں بل دینے کے لیے, لوگ اپنی بیٹیوں کی بالیاں بیچ دیں, یہ ریاست اس لیے ہوتی ہے, یہ ڈاکو ہے. اس لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے, بہت بڑا ایک مسئلہ درپیش ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ آپس میں اتحاد پیدا کرے اور ان ڈاکوؤں سے جان چھڑا لے. اس لیے فرمایا الذین یبخلون, عام طور پہ بے دین لوگ وہ ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں, بالکل کنجوس مکی چوس. ویامرون الناس بالبخل, دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ بیوقوف آدمی تم کیوں دین پہ خرچ کر رہے ہو, اچھی طرح سن لو. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل, اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, چھپ چھپ کے بینک جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے بیلنس کتنا ہے, چھپ چھپ کے پلاٹ خریدنے جاتے ہیں کہ گھر والے دیکھ نہ لیں. تو یہ انجام کیا ہے؟ کفن کے تو جیب نہیں ہے نا, مر جاؤ گے سب تقسیم ہو جائے گا, کیوں نہ یہی مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرو, اور قبر میں جاؤ تو نعمتیں تمہاری انتظار کر رہی ہوں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے, جس کو سمجھ میں آ جائے اللہ اس کو بہت بڑی جنتیں دے دے, اور جس کو سمجھ میں نہ آ جائے نہ سمجھے بھائی ہم کیا کریں. اس لیے فرمایا ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل, اللہ کی نعمتوں کو چھپانا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں کا اظہار پسند ہے, شکر پسند ہے. ناشکرے ہوتے ہیں بڑے غلط لوگ. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا, جو بخل کی تبلیغ کرتے ہیں, جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں, سن لو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, اور وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں صرف دکھلاوے کے لیے, ایک اور بیماری, कैवल तो बखील है, कर ही नहीं रहा, लेकिन कर रहा है अल्लाह के लिए नहीं, किसी और के लिए। फरमाया वला युमिनून बिल्लाह, यकीन करो इसका अल्लाह पर ईमान ही नहीं है जो दिखलावे के लिए कर रहा है। वला बिल यौमिल आखिर, और इसका आखिरत पर भी ईमान नहीं है। वमन यकुन शैतानु लहू करीनन फसा करीना, और शैतान जिसका साथी हो तो वो साथी बहुत बुरा है। चूंकि अब वक्त ज्यादा हो गया है तो ये तो काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा हल मुश्किलातिना वक्त हाजातिना व अदफा अन्ना बलियातिना व शफी मरदाना व اسمع दावातिना इन्नका समीउ दुआ। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين। दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला मुसलमानों की दुआएं कबूल करें। और ये बिजली और गैस के नाम पे जो हम पे कुछ ताकतें मुसल्लत हैं और मुसलसल मुसलमानों पे जुल्म पे दरपे हैं, या अल्लाह मुसलमानों को इस मुश्किल का हल दे दीजिए, और या अल्लाह खुशहाली पैदा फरमा दीजिए, और हर तरफ जो मायूसी है और हर तरफ गुरबत है, या अल्लाह अपने खास फजल एहसान से इन हालात को बदल दीजिए। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे की हिफाजत कीजिए। हमारे बुजुर्ग नमाजी हैं, उनके पोते बहुत बीमार हैं, दुआओं का कहा है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत दें। हमारे हजरत मौलाना मंसूर साहब भी बुखार में हैं, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको भी कामिल सेहत दें। हाजरीन मजलिस में जो कोई मौजूद है और बीमार है, अल्लाह ताला उनको भी कामिल सेहत दें। जो मरहूमीन हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, और अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको बेहतरीन तरीके से कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दें। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। ज़रा